ओम शांति। मेरी आदरणीय प्यारी बहन ने बहुत कुछ मेरे लिए कह डाला। वास्तव में तो इतना ही काफी है कि प्रभु ने अपनी सेवा का सुअवसर दिया और हम उसकी सेवा में संलग्न हुए। इतना ही परिचय बहुत है। जब मैं आई तो गीत चल रहा था, लगे तपस्या की लगन, तो मुझे एकदम सामने बाबा आ गए। क्योंकि जब शिव बाबा ने साकार बाबा को अपना रथ बनाना था, तो आप में से बहुतों को अवश्य मालूम होगा कि उस रथ बनने से पूर्व बाबा ने ब्रह्मा बाबा की मनोधरती को तैयार किया। इस कदर तैयार किया कि शिव बाबा उसमें आकर के कुछ भी कभी भी अपने महावाक्य उच्चारण कर सके। कई बार साकार बाबा बताया करते थे, बैठा बैठा दिल चाहता था किसी साइलेंस में चला जाऊं, ऐसी जगह जाऊं जहां कोई आवाज न सुनाई दे। जिसका वो एक किस्सा प्रसिद्ध है कि बहू को कहा कि दूध ले आओ पी लूंगा, लेकिन बाबा को उस कदर साइलेंस की आकर्षण हो रही थी कि वो कुछ लंबा समय इंतजार में बैठ नहीं सकते थे, उठकर चल दिए। कहां चल दिए, किसी को बताया नहीं। दूध लेकर आई बहू, देखती है पिताजी है नहीं। उनके बड़े भाई को बताया, पिताजी कहीं चले गए, बैठे थे लेकिन चले गए। सारा ढूंढा तो ऊंची पहाड़ी पर जाकर बाबा बैठे थे और बहुत साइलेंस में बैठे थे, जैसे कोई कहीं दूर दूर गया हो। तब भाई वहां पहुंच गया और जाकर यही कहा, क्या तुम पागल हो गए हो, क्यों यहां आ गए, यहां आकर क्या कर रहे। ये बाबा भी बता नहीं सकते थे मैं क्यों आ गया और मैं क्या कर रहा था। ये सब अलमाइटी का प्लान था। उन्होंने उस तन में आने से पूर्व उस तन की आत्मा को तैयार किया, और तैयार इस कदर किया जो कई बार बाबा कहते थे, जैसे कोई छोटा बच्चा दीवारों पर पेंसिल से निशान डालता रहे, इस प्रकार मैं हाथ में पेंसिल पकड़ता और दीवारों पर चक्र बनाता रहता, कभी ऐसे करता जो स्वास्तिका बन जाती और बना के देखता ये क्या बना। लेकिन सब देखकर यही आश्चर्य खाते थे, क्यों ऐसा करते हैं, और मैं स्वयं भी समझ नहीं पाता था कि मैं सब क्यों कर रहा हूं। वास्तव में देखा जाए तो अलमेठी बाबा उनके द्वारा अपना कार्य कराना चाहते थे, लेकिन स्वयं को पहले गुप्त रखा और उस आत्मा को कुछ कुछ धीरे धीरे बताते चले गए। कहते लगन हो, तपस्या की लगन लग जाए। एक लगन ऐसी चीज होती है, कहते लगन एक अगन है, रास्ते की सब रुकावटें समाप्त कर देती। बहुत समय हुआ मैंने कोई मैगजीन में पढ़ा कि एक युवा थे, उनको बहुत लगन थी क्रिकेट मैच देखने की। वो रह नहीं सकता था क्रिकेट मैच देखे बिना, लेकिन था काफी निर्धन, क्या करे और कौन सा तरीका ले, क्योंकि वहां तो काफी ज्यादा टिकट दे के अंदर प्रवेश द्वार में जा सकते थे। तो उसने एक दिन कहा कि अपने आगे एक चौघा ऐसा बनाया और उसके अंदर कुछ ऐसे कागज के दोने से बना लेते हैं चना जोर गरम बाबू के, वो ऐसे बना के उसमें डाल दिए, और जिस समय रिसेस बीच में होती है उस लंच टाइम में वो अंदर गया गांधी पिस्ता, गांधी पिस्ता, गांधी पिस्ता, तो लोग बड़े अट्रैक्ट हुए, गांधी पिस्ता कौन सा है। वो थी मूंगफली, लेकिन गांधी पिस्ता के आवाज से उसने जाके पब्लिक को अट्रैक्ट किया और गांधी पिस्ता थोड़ा सा हिलाया था, सब बिक गया। जल्दी से अपना कपड़ा हटाया, कुर्सी एक खाली साइड में पड़ी थी, जाकर वहां विराजमान हो, और पूरा मैच जब प्रारंभ हुआ सारा मैच देख कर आया, छोड़ा नहीं। अब सेकंड डे फिर मैच है, अब कैसे देखूं। फिर वही रिसेस टाइम में एक टोकरा लिया, झाड़ू लिया जमादार का, और लेकर सफाई के लिए जल्दी जल्दी, जब रिसेस होती थी जल्दी से जल्दी अंदर प्रवेश हुआ, और पीछे हटो जरा, पीछे हटो, पीछे हटो करता करता झाड़ू थोड़ा सा लगाया, झाड़ू रखा नीचे कुर्सी के, टोकरा एक साइड रखा और बैठ गया कुर्सी पर, मैच देख लिया। लगी लगन है, सचमुच अगर लगन लग जाए तो लगन मनुष्य को रास्ता दिखा देती है, और उसके रास्ते में आई हुई कोई भी अड़चन उन सब चीजों को हटा देती है। आज के दुनिया के एग्जाम्पल हमारे सामने, हम कहते हैं योग कैसे लगाए, बुद्धि कहीं चली जाती है। अरे जिससे लगन लग जाए उस प्रभु से बुद्धि का योग ना लगे और बुद्धि कहीं और चली जाए, ये कैसे हो सकती है। गेम से लगन लग गई, वो गेम देखे बिना नहीं रह सकता, चाहे जमादार बनना पड़े या मूंगफली बेचने वाला बनना, मुझे ये कार्य करके वहां पहुंचना जरूरी। तो प्यारे बाबा भी कहते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि शुरू से इस यज्ञ की जब से स्थापना हुई, क्योंकि जब बाबा ने ब्रह्मा बाबा की मनोधरती को तैयार करना शुरू किया, तो सबसे पहले बाबा ने अपने घर में गीता ज्ञान सुनाना शुरू किया, और जो नजदीक के संबंधी थे, कुछ जानने पहचानने वाले थे, धीरे धीरे वो लोग भी आने शुरू हो गए। और बाबा का प्रारंभ से ये एम रहा कि जो यहां आएगा वो कुछ जीवन में परिवर्तन करके जाएगा, ऐसे ही नहीं आना है। तो शुरू में जब इस यज्ञ का प्रारंभ हुआ तो बाबा ने छोटी छोटी डायरी और पेन, पेंसिल थी उस समय, सबको देता था, बच्चे ये सबको देते जाओ जो नया आए, और तीन बातें लिख कर लाना। पहली बात, हमने आहार शुद्ध किया। दूसरी बात, हमने किसी प्रकार की परिस्थिति आने पर भी आंसू तो नहीं बहाया। तीसरी बात, मैं दुखी तो नहीं हुआ, ना मैंने किसी को दुख दिया। ये तीन बातें लिख कर लाएंगे तो सेकंड डे गेट पर दो दादियां खड़ी हो जाती थी, और आने वाले आगंतुकों से वो पैड उनका ले लेती थी, चेक करके फिर हम आपको देंगे। सबका काम देखा जाता था, इन्होंने किया कि नहीं किया। ये लक्ष्य था कि जो यहां आए उसका जीवन चेंज हो, और इस बात का इतना अच्छा शहर में प्रभाव पड़ा कि लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आने लगे, क्योंकि उन्हें ये लगा कि दादा के पास जाने वालों को जीवन में बहुत सुधार की बातें सिखाई जाती हैं, अच्छा बनने का रास्ता बताया जाता है। इसलिए अपनी माताओं को, कन्याओं को, बहनों को, जाओ बेटे वहां दादा से जाके सत्संग सुनो। इसलिए धीरे धीरे ये मंडली बढ़ती चली गई। वो तो लंबी गाथा है कैसे फिर बाबा ने अपनी पहचान दी। तो बाबा ने प्रारंभ जब किया तो प्रारंभ में यही कार्य रखा कि ये बात जो यहां सुनते हो उसको जीवन में ग्रहण किया। और आप सब समझते हो इस विद्यालय का ज्ञान बहुत लोग सुन रहे हैं, टेलीविजन में सुन रहे हैं, वीडियो से देखते हैं, अनेक प्रकार के साधनों द्वारा उनके पास ज्ञान पहुंच रहा है। और बहुत से बाबा के बच्चे, जो बच्चे ही कहलाते हैं, क्लासेस में जाते हैं, बाबा के महावाक्य सुनते, वाणी सुनते, लेकिन वाणी सुनी, ज्ञान सुना, अनेक प्रकार के लेक्चर सुने। देखिए बाबा हमेशा कहता है, बच्चे कुछ भी सुना हो, सबसे पहली बात है कि ज्ञान सुनाने वाला कौन है। ये जब तक निश्चय नहीं हुआ तब तक मेरे बच्चे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के विद्यार्थी नहीं कहला सकते। ईश्वर के बच्चे न केवल विद्या के विद्यार्थी हैं, पिता के पुत्र हैं, ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, और ब्राह्मण बच्चों को बाप के वर्षे का अधिकार मिलना है। लेकिन अधिकारी बच्चों में सबसे बड़ी बात है कि उनके अंदर निश्चय कितना हुआ कि ज्ञान देने वाला दाता कौन है। और बाबा ने एक मुरली में कहा था, बहुत बड़ी बात कह डाली थी, निश्चय बुद्धि कुल 8 बच्चे निकलते। अरे बच्चे इजी नहीं है, साधारण तन में आए हुए वो सर्वशक्तिवान को पहचानना और पहचान कर उनकी आज्ञा के अनुकूल अपने जीवन को चलाना, ये सहज काम नहीं। बच्चों को देखना हमें निश्चय है। और हमारी दादियां सुनाती थी, समय प्रति समय बाबा हमसे निश्चय के फॉर्म भरवाते थे, लिखो निश्चय है। और विभिन्न रूपों से बाबा ये काम देते थे और सब बाबा को लिख कर ये देते थे। कुछ बच्चों ने जब समर्पित कर लिया, बाबा के यज्ञ में परिवारों के परिवार आ गए, फिर भी बाबा ने कहा निश्चय पत्र लिख कर दो। और एक बार नहीं, एक बार बाबा ने कहा 108 बार एक एक बच्चा निश्चय पत्र लिख कर देगा। लेकिन ये ध्यान रखना, निश्चय पत्र एक का, एक निश्चय पत्र से दूसरा निश्चय पत्र मेल नहीं खाना चाहिए, उसकी भाषा उससे भिन्न होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक लिख के उसकी कॉपी निकाल लो हो गया निश्चय पत्र 108, नहीं। तो हमारी दादियां सुनाती थी हम 108 बार निश्चय पत्र लिखते थे। और जब सेवाएं प्रारंभ हुई, हमको याद है उस समय बाबा का लिखत आती थी, बच्चे सब आप सहित सभी से निश्चय पत्र लिखवा कर भेजो। हम इतनी डायरियां सबसे निश्चय पत्र लिखवा के इतनी डायरियों का पैक बना करके बाबा को भेजा करते थे। हर एक निश्चय पत्र लिखे, ऐसे नहीं जब चाहे क्लास में आके बैठ गया, जब चाहे आया, जब चाहे नहीं आया, निश्चय है। इस विद्यालय का टीचर कौन है, ये किसका विद्यालय, शिक्षा देने वाला कौन है, लिखो। और सब बच्चे लिख कर देते थे। जब बाबा अव्यक्त हुए, अव्यक्त होने पर हमारी दादियों ने भी एक बार लिखत भेजी कि एक बार सबसे निश्चय पत्र लिखवाओ। अब इतना समय हो गया निश्चय पत्र लिख कर सब दे रहे हैं, और पहले बड़े मजबूत होते थे, परीक्षाएं बहुत थी, प्रस्तुतियां बहुत थी, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी के अगेंस्ट वातावरण बहुत हो चुका था। लेकिन ऐसे वातावरण में भी हमको याद है जब हम आते थे सेंटर, पीछे लिखत मिलती थी ब्रह्मा कुमारियों के पखंड से बचो। हर दीवार पर स्टेंसल से कटा हुआ ये लिखा हुआ होता था, और हमारे पीछे पीछे चल देते थे, ब्रह्मा कुमारियों के पखंड से बचो। लेकिन जा रहे हैं हम आगे आगे, कोई परवाह नहीं, कहने दो कहते हैं। और बाबा कहते थे निश्चय पत्र लिख कर दो। मैं आपको निजी अनुभव सुनाना चाहूंगी। मुझे एक बार ऐसा आया, जब हमने परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, निश्चय किया है कि भगवान आ चुका है, उसके हम बच्चे हैं, उसके मुखारविंद से हम पैदा होने वाले ब्राह्मण हैं, अब निश्चय पत्र कहीं और लिखने की आवश्यकता है। वे इस बार मैंने तो निश्चय पत्र लिखना नहीं, मन में सोचा, क्योंकि निमित्त थी सेवा केंद्र में। और अगर मैं नहीं लिखती सामने और उनको कह दूं मैं नहीं लिखती तो उनको क्या प्रभाव पड़ेगा। अच्छा मैं नहीं लिखती, मैं बाकियों को तो नहीं बता सकती। मैंने सबसे निश्चय पत्र लिखवाया लेकिन मैंने स्वयं निश्चय पत्र नहीं लिखा और सबका निश्चय पत्र भेज दिया। मन अंदर खाता था, यज्ञ से दादियों के द्वारा ये यज्ञ की या डायरेक्शन आई है निश्चय पत्र लिखो, फिर भी मैंने नहीं लिखा क्योंकि मुझे ये आता था अब भगवान तेरे सिवाय हमारा कौन है, हमने सब जग छोड़ा तेरे लिए, सिवाय तेरे हम किसी को अपना नहीं समझते। अब निश्चय है तभी तो हम जीवन दे दिया है। लेकिन मैं समझती हूँ कुछ चार पांच दिन के बाद ही बाबा के अव्यक्त बोल आए। आज भी वो किताबों में मुरली मिलती है, वह अव्यक्त बोल ना जाने जब सुनने वालों ने उसे किस भाव से सुना, लेकिन मैंने किस भाव से सुना वे मैं आपको बताती हूँ। उसमें एक एग्जाम्पल दिया था बाबा ने वाणी में। बाबा ने कहा कभी कभी बड़ा तेज तूफान आता है और वो तेज तूफान से कई बिजली के पिलर गिर जाते हैं, कमजोर छतें टूट जाती हैं, टीन की छतें उड़ जाती हैं, दीवारें गिर जाती हैं, बहुत नुकसान होता है। और सचमुच एक बार तूफान आया था, हमने देखा इतना नुकसान होता है, कितने पक्षी मरे हुए पड़े हैं क्योंकि पेड़ों में पेड़ ही गिरा है और कहाँ उड़ के जाएंगे, इतना तेज तूफान है, बहुत कुछ नुकसान था। लेकिन उसके पश्चात बाबा ने वाणी में कहा एक हल्का तूफान आया, इतना तेज नहीं आया जितना पहले आया था, अब एक हल्का तूफान आया। और हल्के तूफान में क्या हुआ कि एक बहुत पावरफुल वृक्ष, बहुत बड़ा वृक्ष वो गिर गया। जब वो इतना पावरफुल वृक्ष गिर गया तो सभी देखने जा रहे हैं, अरे वो वृक्ष गिर गया, वो वृक्ष गिर गया, सब कहते अरे उस वृक्ष को क्या हुआ, इतना पावरफुल वृक्ष इतने बड़े तूफान से नहीं गिरा और ये छोटे से तूफान से वो गिर गया। सभी को बड़ा आश्चर्य, सब देखने जा रहे हैं। और आप और हम समझ सकते हैं वो वृक्ष क्यों गिरा, बड़े तूफान में नहीं गिरा, छोटे तूफान में गिरा है, कारण क्या है। और हम सब समझते हैं कि बड़े तूफान के चलने से वो वृक्ष छेक किया, शेक इस कदर किया कि उसकी जड़ें हिल गई। लेकिन ये तो कोई दिखाई दे ही नहीं रहा, और हिल जाने के कारण अब छोटे तूफान के प्रभाव से वो वृक्ष गिरकर धराशायी हो गया, गिर गया। अब आश्चर्य की बात नहीं है, छोटे तूफान से गिर गया क्योंकि बड़े तूफान ने उसकी जड़ें हिला दी थी। मुझे ऐसा लगा कि मुझे उत्तर मिला है, और ये उत्तर मुझे एक अन्य एग्जाम्पल से बहुत सुंदर स्पष्ट हुआ। एक माता थी, ज्ञान में चलती थी, और जिसको कहेंगे अनन्य रतन, उसको हमेशा कहते थे यज्ञ माता है। उसका दामाद अपने ससुराल घर में, उस माता के घर में मिलने के लिए आया हुआ था, अचानक उसको हार्ट अटैक हुआ, उसने शरीर छोड़ा उसी के घर में। सोचो कितनी बड़ी घटना है, सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, रोना धोना चल रहा है। जब उसको ले जाने का टाइम था, थोड़ी तैयारी करते हैं, वो बीच में से निकल के जल्दी से जल्दी आकर के बाबा के घर अपनी हाजिरी लगा के बाबा के वचन चार पढ़कर जल्दी जल्दी वापस की। मेरी क्लास नहीं मिस होनी चाहिए, मेरे बाबा के रतन नहीं मिस होने चाहिए, इतनी पक्की आत्मा। यहां तक कि उसकी लड़की की शादी थी, एक बार विदाई थी लड़की की, विदाई के टाइम सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, अभी विदाई हो रही है, विदा हो रही है, और वो बीच में निकल के आ गई कैसे भी करके। मेरी गैर हाजिरी नहीं होनी चाहिए, आकर वाणी पढ़ के जल्दी से जल्दी चल गई, विदाई में हाजिर हो गई। पति का दिवाला निकल गया, सोचिए क्या क्या निहालात आए, निश्चय बुद्धि बहुत है। दिवाला निकल गया तब भी उसने क्लास नहीं मिस की, बहुत कुछ आया, बहुत उसके ऊपर कई प्रकार के विघ्न आए, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई और क्लास नहीं छोड़ी। तो सबके लिए एक एग्जाम्पल था कि अगर एक एग्जाम्पल निश्चय बुद्धि देखना हो तो इस आत्मा को देखो, कितनी परीक्षाएं और कितनी परिस्थितियां आई। लेकिन उसके पश्चात जब पति की छाया भी सिर से चली गई तो बेटे ने अपने बिजनेस वाइंड अप किया और कहा मैं किसी दूसरी जगह बिजनेस करूंगा जहां उसके चांसेस है बढ़ने के, इसलिए मम्मी यहां से शिफ्ट होंगी। तो माँ ने भी ठीक कहा, जाना है तो मुझे भी जाना ही पड़ेगा। सब सामान पैकिंग वैकिंग सब हुई, लेकिन वो क्लास करके जाती थी और जहां जाना था वहां हमने पहले से लिख दिया हमारा एक अनन्य रतन आ रहा है, आप इस अनन्य रतन की संभाल करना, स्थूल और सूक्ष्म खातरी जरूर करना, ये अनमोल रतन है। 8-10 दिन के बाद उनका फोन आता है, आपका अनन्य रतन अभी तक तो आया नहीं। आश्चर्य, वो आया नहीं, आई नहीं, क्या हुआ? फोन किया, कहा दीदी सब सामान डिसमेंटल करना, स्थान पर रखना, ये करने में टाइम लगता है, अभी मैं जा नहीं पाई, मैं जाऊंगी जरूर, अभी जाऊंगी बस। लगा तो बड़ा आश्चर्य, लेकिन चलो ठीक है। उसके पश्चात और 6 दिन हो गए, अभी भी नहीं गई। अब पूछा अब क्या कहती है, कहती दीदी मैं गठड़ी भरी हुई है मुरलियां डायरियां जिसमें सब पॉइंट्स लिखे हैं, पहले वो तो पढ़ लूं, नई मुरली पढ़ने जाऊं, पहले पुरानी तो खत्म करूं, जो डायरियों में पॉइंट्स नोट किए हैं पहले उनको तो लाइफ में लाऊं। ये पुरुषार्थी का बोल नहीं हो सकता, ये राइट बोल नहीं है। आप सोचिए उसके बोल में फर्क क्यों आया, ये सब क्यों हो रहा है? बाबा ने कहा हुआ है निश्चय बुद्धि बच्चों में 2 निशानियां होंगी। पहली निशानी निश्चय बुद्धि के है वो सदा निश्चिंत होगा, कितनी घटनाएं हो जाएं लेकिन उसको चिंता नहीं होगी, कभी चिंता आई नहीं। और दूसरी निशानी है सदा उसको इस बात का निश्चय है कि जो कुछ हो रहा है ये निश्चित है, प्रीडेस्टिन्ड डेस्टिन्ड ये होना ही है। तो निश्चिंत और निश्चित ये 2 निशानियां हैं उसकी, और रियली उसकी 2 निशानियां दिखाई देती थी, लेकिन अंदर कौन जान सकता है अंदर का क्या हाल है। फिर आकर उससे पूछा क्या बात है, समझ में आ गया जो बाबा कहते हैं निश्चय पत्र लिखो, कोई बात जरूर है। तो बात निकली कि दीदी मैंने बहुत परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन मेरे मन में कई बार विचार आता था बाबा कमजोर कमजोर जिन्होंने इतना पुरुषार्थ नहीं किया, जो इस प्रकार के हालात में घर बैठ जाते हैं, मैं फिर भी जाती रही लेकिन बाबा ने मुझे कोई मदद नहीं की, मुझे बाबा ने सहयोग नहीं दिया, मैं बाबा को उलहना और तहना देती थी, बाबा मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया लेकिन आपने इतना भी तो मेरे लिए नहीं किया। आप सोचिए ये अंदर ही अंदर संशय का कीड़ा लग रहा था, और उस कीड़े ने उस पेड़ की जड़ों को हिला रहा था। अब केवल उसको उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की ही आवश्यकता थी। बस शिफ्ट होते ही वो जब हिली हुई जड़ें थी, हिली हुई जड़ों का वो वृक्ष अब धराशायी हो गया, अब वो जा नहीं रहा। सब आश्चर्य खा रहे हैं, अरे वो नहीं जा रही सेंटर, क्या हुआ, हुआ क्या? तो प्यारे बाबा जो हमको कहते हैं, वो हम ये ना समझें बाबा कहता है पता नहीं किसके लिए कहता है, नहीं बाबा हम सबके लिए कहते हैं, हम सब इंक्लूडेड हैं उसमें। बाबा कहते हैं निश्चय पत्र लिखो, और मैं आपको बताऊं जगदीश भाई जिन्होंने इस यज्ञ का इतना इतिहास लिखा, लगभग 200 बुक्स लिखी, वो अपना अनुभव सुनाते हैं। कई बार कहते थे कि मैंने जब पता चला कि लोगों ने मुझे पहले दादियों ने नहीं बताया कि भगवान आया, ज्ञान सुनाती रही, लेकिन मुझे कुछ ने कहा कि भगवान आ चुके हैं दरा पर, हम तो उनसे मिलने माउंट आबू जा रहे हैं। हमने कहा सचमुच, मैंने इतनी भक्ति पूजा पाठ की, इतने शास्त्र ग्रंथ पढ़े, इतने साधु संतों का संग किया उस भगवान को मिलने के लिए, और आप कहते हो भगवान आ चुका है, भगवान आ चुका है, और मैं भगवान आए हुए से मिलने ना चाहूं? तो जो उनको अटेंड करती थी दीदी, उसने अपनी बड़ी दीदी से पूछा कि दीदी बहुत चाहती है ये आत्मा कि मैं भी माउंट आबू जाऊं। बड़ी दीदी ने कहा इसको बिल्कुल नहीं माउंट आबू भेजना, क्योंकि जो कोर्स कराती थी घंटों उनका दिमाग खाते थे, कहते ये हमारा दिमाग खाता है, बाबा को भी ऐसे प्रश्न पूछेगा तो बाबा कहेगा किसको ले आए हो, इसलिए इसको माउंट आबू नहीं भेजना, कहो एक साल हो जाएगा ना फिर भेजे। कहा आप साल कहते हो, मैं एक दिन भी नहीं रह सकता, अब मेरे लिए इतने घंटे भी रहना मुश्किल है, अगर भगवान धरा पर आ चुके हैं मैं उस आए हुए भगवान से ना मिलूं, ऐसा कैसे होगा, कृपा मुझे आप जाने की अनुमति दीजिए। तो बहुत ज्यादा जब कहा तो बड़ी दीदी ने कहा इनको कहो 108 बार निश्चय पत्र लिख कर लाए, लेकिन एक निश्चय पत्र दूसरे निश्चय पत्र से मेल ना खाए, ये बड़ा चालाक है, ये कॉपियां करके ले आएगा, इसको साफ शब्दों में कहना। जगदीश भाई ने कहा क्यों नहीं, जगदीश भाई ने कहा शाम को सवेरे जाना है, 9:10 की ट्रेन है, शाम को 5 मुझे अनुमति मिली है, टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज सोनीपत में वो प्रिंसिपल थे, कहा मुझे अपने कॉलेज के कार्य को भी वाइंड अप करना था ताकि किसी को हैंडओवर करके काम आओ, वहां का हॉस्टल भी मैं देखता था उसका भी काम मुझे सौंपना था, पेरेंट्स मेरे आर्य समाज जी को मानने वाले थे उनको भी मुझे मनाना था, और अपने कपड़े धो धा के तैयार करके मुझे वहां निकलना था, और 108 बार निश्चय पत्र भी लिखना था। जब सुबह टाइम से पहले पहुंच गए और निश्चय पत्र लाके अपने टीचर के हाथ में दिया, वो इतनी खुश हो गई कि निश्चय पत्र लिख लिया, कहा ये तो बाबा का सच्चा परवाना निकला दीदी, निश्चय पत्र लिख कर ले आया। दीदी हमारी बड़ी शुरूर बुद्धि थी, दीदी बड़ी ने पकड़ते ही गिनती करना शुरू किया, गिनती किया तो 27 निश्चय पत्र थे, 108 नहीं थे। फिर जाके कहा जगदीश भाई ये तो 27 हैं, मधुबन कैसे जाओगे 108 नहीं। कहा दीदी आप इसका सेकंड पेज देखिए, सेकंड पेज में लिखा हुआ था कृपया एक पत्र को 4 पढ़े, 7 एक पत्र को 7 पढ़े। अब कहा आपने एक ही बार पढ़ा है ना, 7 पढ़ी, तो कहा ये कैसे होगा, चलाकी दादी ने कहा ये तो चलाकी मारी थी। कहा मेरे पास टाइम होता तो मैं 1008 लिख के आता, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, नहीं तो मैं अवश्य लिखता, तो मेरा मतलब है इतना दृढ़ करके तब जाके मधुबन जाने का टर्न मिलता था। ऐसे नहीं चलो मधुबन चलो बाबा से मिल लेंगे, नहीं। बहुत परिपक्वता होती थी और बाबा के पास जब आया तो बाबा ने तो पहचान लिया कि बच्चा कौन है और क्या है, ये तो उनकी कहानी है सर। तो मेरा कहने का ये भाव है निश्चय बहुत बड़ी चीज है। अब आज मैं कहूं आपको कि आज कोई दादी नहीं, कोई कहेगा नहीं कि लिख के लाओ। आज क्या काफी समय से कोई नहीं कहता अपना निश्चय पत्र लिखो, और आज आप कहेंगे अच्छा लिखेंगे भी तो कोई देखेगा? कौन देखेगा? बाबा कहता मैं देखूंगा। बाबा कैसे देखेगा? बाबा कहते पहले भी जो कागज पर लिखते थे वो कागज की लिखत तो आपका साकार देखता था, दीदी दादियां देखती थी, मैं जब मन में लिखने के पहले जो मन के भाव आते हैं मैं वो पढ़ लेता था, और बच्चे वो आज भी पढ़ूंगा। तो लिख निश्चय पत्र आज भी लिख कि मुझे निश्चय। कई बच्चों ने खून से लिख के भेजा, मुझे याद है हमारे पास दो कुमार थे, खून से लिख कर उन्होंने भेजा, वो कुछ कच्चे हुए, बाबा ने वही दोनों के पत्र वापस हमको भेजे। कमाल है, हमको आया कि बाबा ने पत्र संभाल के रखे हुए थे। आलमाइटी भी है ना, वो गुप्त रूप से सबकी जीवन गाथाओं को जानते, और कहा ये पत्र उनको हैंडओवर कर देना, ये उनके निश्चय पत्र। आज भी अगर निश्चय पत्र लिखते हैं और लिख करके आप डिब्बा बना लीजिए, उसमें रख दीजिए, हर मास लिख लीजिए, चाहे दो मास के बाद पकड़ के फाड़ दीजिए, किसी को दिखाइए ना, ना कोई देख सके। लेकिन जब आप लिखेंगे तो लिखने से पूर्व आपके मन में जो भाव आएंगे, बाबा कहते हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। मुझे याद है मैं एक बार बाबा के पास आई और मैंने कहा बाबा सबने बहुत याद प्यार दिया आपको। बाबा ने कहा बच्चे तेरे आने से पहले ही बच्चों की याद प्यार मुझे पहुंच गई। मैंने कहा मैं ऐसे संभाल ले आई याद प्यार, मुझे अच्छा ही नहीं लगा कि सबने कहा याद प्यार देना और मैं जाके दे रही हूं, और बाबा कहते हैं मुझे याद प्यार तेरे आने से पहले ही मिल गई, दाता ने पहले ही उनकी याद प्यार ले ली, मैं क्या याद प्यार फिर देने चली गई। और जब मैं वापस आने लगी तो मैंने कहा मुझे क्या जरूरत है पत्र इनके लिए लिखवाना, क्योंकि जब मैं वापस जाती थी तो बाबा से याद प्यार का पत्र लेकर जाती थी। मैंने कहा जब बाबा को उनकी याद पहुंच गई तो बाबा की याद भी पहुंच जाएगी। तो जब मैं गई तो सबने कहा दीदी पत्र नहीं आए, दीदी याद प्यार का पत्र नहीं आए। मैंने कहा नहीं, मैं जब पहुंची तो बाबा ने कहा बच्ची तेरे आने से पहले बच्चों की याद प्यार पहुंच गई, तो आपको भी पहुंच गई होगी। लेकिन मैं उस समय ये बुद्धि नहीं समझ में आई मुझे, क्योंकि मैं अभी अभी नहीं थी ज्ञान में, कि बाबा तो बुद्धिवानों का बुद्धिवान है, उसकी तो लाइन क्लीन और क्लियर है, वो तो कैच कर लेगा, लेकिन बच्चे तो नहीं कैच कर सकते कि बाबा ने उनको याद प्यार दे रहा है, उनको तो स्थूल में चाहिए। तो बाप कहते हैं मुझे तेरी लिखत की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे स्थूल की जरूरत नहीं है, जब तू लिखता है तो तेरे मन में आता है। अभी भी बाबा कई बार कहते हैं बच्चे अपना हिसाब किताब लिखो, पोता में लिख कर दो। कहते किसको दे, कोई चीजें हैं हम अपने निमित्त टीचर को नहीं देना चाहते, यज्ञ में पता नहीं किसके हाथ जाए। बाबा कहते तो चिंता ना कर, तो लिख के अपना डब्बा बना दे, अपने ही पास रख ले, किसी को ना देना, ताला लगा ले अपने डिब्बे को भी, उसमें लिख के डाल दे, हर 8-10-15 दिन के बाद निकाल के सब पत्र फाड़ दे। लेकिन जब तू लिखेगा तो तेरा एक एक पत्र मेरे पास पहुंचेगा। मैं तुझे कैसे भी करके, चाहे वाणी के द्वारा चाहे किसी अन्य के द्वारा, चाहे किसी क्लास के द्वारा तुझे उत्तर जरूर दूंगा। कभी भी बाबा उत्तर ना दे ऐसा नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है किस बात पर जरूर ध्यान देना है, निश्चय सबसे बड़ी चीज। हम एक बार बाबा के साथ बॉम्बे में थी, क्लास चल रही थी, बड़ा हॉल था, मैं समझती हूँ लगभग 400 बच्चे बैठे होंगे, और बाबा ने वाणी चलाते चलाते बीच में कहा, बच्ची लच्छो बच्ची जाओ बाबा के वहां से प्लेन पेपर लेकर आओ और सब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सभी बच्चे निश्चय पत्र लिखेंगे, और ऑलमाइटी बोल रहा है जिसका निश्चय पत्र इससे, ब्रह्मा बाबा की तरफ इशारा है, जिसका निश्चय पत्र इससे मेल खाएगा उसको शाम की सभा में इनाम दिया जाएगा। उसी समय पत्र आ गए और प्लेन पेपर आए और सभी को डिस्ट्रीब्यूट किए। सब डायरी पेन लेकर ही बैठते थे क्लासेस में, कोई डायरी पेन के बिना नहीं आते थे। बाबा ने कहा बिखर जाओ। रेंटेड बिल्डिंग थी बॉम्बे में, उसके कई कमरे भी थे। बाबा ने कहा भिन्न भिन्न कमरों में जाके बैठ जाओ, कोई बात नहीं, सब लिख के लाओ। और सब ने शाम को लिख कर लाए। जब लिख कर लाए तो एक बच्ची कन्या थी, एक उसका ऐसा कहो कि इतना सा बाबा से मेल खाया, इतना सा, बाकी का इतना भी मेल नहीं खाया, सभी का बिंद था, एक उसका इतना सा मेल खाया। बाबा ने कहा चलो इसी को बच्ची को इनाम दूंगा। तो साकार बाबा से भी शिव बाबा लिखवाता था, लिखो तुम भी, कि स्वयं सर्वसमर्थ सर्वशक्तिवान प्यारे पिता ज्ञान योग की शिक्षा दे रहे हैं। कई बार हम कहते हैं फला चीज का पूरा निश्चय नहीं, चलो छोड़ो आगे बढ़ो, नहीं, जहां संशय है बाबा ने कहा हम समझो मटके में छोटा सा छेद है, बाकी सारा मटका बढ़ गया है, छोटा सा छेद, धीरे धीरे उसमें पानी सिमते सिमते पानी बह जाएगा, थोड़ा सा क्रैक। तो उस चीज को बीच में नहीं रखो, और निश्चय मानो पूरा निश्चय। बाबा कई बार कहते थे, कई कहते थे आप बताओ भला बाबा ने क्या लिखा था, मुझे नहीं मालूम था कि कभी मुझे ये बात सुनानी भी होगी, नहीं तो शायद मैं बाबा का पत्र लिख लेती। लेकिन जहां तक मैं समझती हूं इतना सा बाबा का लिखत थी, पेपर बड़ा था, इतना सा लिखत थी, लेकिन बाबा की लिखत का ये मतलब था कहीं कोमा या कहीं फुल स्टॉप नहीं था, हर पॉइंट इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ऐसा नहीं कोमा लगे इस पर, ये फुल स्टॉप लगा के फिर शुरू करो, नहीं। जैसे मैं एग्जांपल देती हूं, मुझ आत्मा को 100% निश्चय है कि स्वयं परम पिता परमात्मा कल पूर्व की न्यायी आज फिर से इस पुरुषोत्तम संगम युग में साकार ब्रह्मातन में प्रवेश होकर कल पहले वाला गीता ज्ञान राज्यों की शिक्षा दे, वही महाभारी महाभार, पूरा सारे का सारा निश्चय मानो निश्चय, एक भी बात का संशय नहीं। तो आप सब भी कभी निश्चय पत्र लिख के देखिए। और बाबा कहता था बच्चों का निश्चय अगर हो जाए फिर छोटी छोटी बातों में चिंता नहीं लगेगी, इसने ऐसा किया उसने ऐसा कहा, अरे बच्चे जब कह दिया निश्चिंत रहना, ये निश्चित है सब कुछ, पुरुषार्थ करना तेरा फर्ज है, निश्चित भावी को तू देख कर चल और साक्षी होकर उस खेल को देख, कितना सुंदर खेल तुझे दिखाई देगा। लेकिन तेरी निश्चय की स्थिति न होने के कारण तो छोटी छोटी बातों में चिंतित हो जाता है, ये क्या होगा, ये कैसे होगा, ये कब होगा, ये होना नहीं चाहिए था, ये हुआ कैसे। बाबा ने कहा ये मेरे बच्चों के शब्द नहीं है, जो मैं कहता हूं कम सोचो कम बोलो, कम से कम अपना समय वेस्ट में बचाओ, अपने समय को बचाकर बेस्ट में लगाओ। ये कब होगा, जब बच्चों का निश्चय हो। जिसको निश्चय है भगवान स्वयं धरा पर आकर के गीता ज्ञान और राज्यों की शिक्षा दे रहा। आज हमारी मामा मामा ऐसे नहीं बन गए। मामा को आते ही जो निश्चय था, नंबर वन निश्चय था। मैं देखती हूं मामा बोलना सिखाती थी, छोटी थी। उनसे पूर्व हमारी बहुत दादियां थी, उनकी अपनी लौकिक माँ थी, लेकिन मामा को हमेशा बाबा कहते थे ये कन्या साधारण नहीं है, इसने बाप को पहचाना है, ये तुम्हारी माँ है। सब कहते थे बाबा हम नहीं कहेंगे माँ। नहीं कहो, बाबा नहीं कहता, तुम कहो माँ। लेकिन कैसे मामा ने मामा बनकर दिखाया अपने गुण और कर्तव्यों से, बोलना भी सिखाते थे। कहा एक बार हम सभी बाबा के साथ खेलते भी थे, तो खेल खेल में खेलते खेलते एक दिन हमने बाबा को तो हरा दिया। तो हम वहां कोशिश करते जल्दी जल्दी आए, मम्मा आज हमने बाबा को हरा दिया, मम्मा आज हमने बाबा को हरा दिया। तो मम्मा सुन के चुप रही, कहा मम्मा आपने अप्रिशिएट नहीं किया, आज ही तो हमने हराया, हमेशा बाबा हमको हराता था, आज हमने बाबा को हरा दिया। तो मामा चुप रही, कहा मामा कि हम कुछ गलत बोल रहे हैं। मामा ने कहा किसको हरा दिया, किसके लिए कह रहे हैं? कहा बाबा के लिए। मामा ने कहा ऐसे नहीं कहा जाता। तो मामा क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए आज हमको बाबा ने जिता दिया, आज हमको बाबा ने जिता दिया। तो बात तो ठीक है, वो हारेगा तो हम जीतेंगे ना, लेकिन हरा दिया और जिता दिया कितना फर्क है। बोलना भी सिखाती थी। एक बार बाबा कई बार पहाड़ियों पर बच्चों को ले चलते थे, पहाड़ियों के भी नाम रखे हुए थे, ये प्रकाशमणि पहाड़ी है, ये संदेशी पहाड़ी है, ये संतरी पहाड़ी है, ये मम्मा की पहाड़ी है। तो बाबा एक बार जाने लगे तो बाबा ने पूछा बच्चे किस पहाड़ी पर आज चलना है? कोई कहता है बाबा आज मम्मा की पहाड़ी पर चलें, दूसरा कहता नहीं नहीं बाबा आज तो प्रकाशमणि पहाड़ी में चलें, तीसरे ने कुछ और कहा। मम्मा ऐसे खड़ी रही, मम्मा साथ ही जाती थी, खड़ी है ऐसे मुंह करके, बड़ी गंभीर होके खड़ी। मामा के चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती थी और बहुत गंभीर रहती थी और ऐसे ही खड़ी है। तो बाद में आकर वापिस आकर कुछ जो अनन्य दादियां थी का मामा जब हमसे बाबा पूछ रहे थे किस पहाड़ी पर चलोगे और हम बाबा को उत्तर दे रहे थे, बाबा पूछे तो क्या हमें उत्तर नहीं देना चाहिए था? मम्मा ने कहा देना चाहिए था। तो कहा बाबा फिर मामा फिर आप इतनी चुप चुप क्यों रही? कहा अपने से पूछो कौन पूछ रहा था, निश्चय है, पूछ कौन रहा है? अगर ये निश्चय हो तो बोल कैसे निकलेंगे? सर्व समर्थ सर्व शक्तिवान तो बच्चों से पूछता है उस साधारण तन के द्वारा, और वो तन भी साधारण नहीं, वो भी विश्व की प्रथम आत्मा जो फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड है, आपसे पूछे किस पहाड़ी पर चलना है और आप कहते हो प्रकाशमणि पहाड़ी पर, दादी पहाड़ी पर, फलां पहाड़ी पर, तो मामा बताओ क्या कहना चाहिए? आप ही बता दीजिए क्या कहना चाहिए। तो मम्मा ने यही कहा कहना चाहिए बाबा जिस पहाड़ी पर आप ले चले वहीं हम चलें। आप क्यों अपनी सजेशन देने लग गए बाबा मम्मा पहाड़ी पर चलो? अरे जिस पहाड़ी पर बाबा ले चलेगा वही तीर्थ स्थान बन जाएगा, क्या समझते हो? तुम देखते थे मम्मा का निश्चय, बहुत निश्चय जिसको कहते हैं, बड़ी गंभीर बात थी और निश्चय बुद्धि पूरी थी। ऐसा निश्चय बाबा कहता था ये नंबर वन निश्चय बुद्धि बच्चा है। जब मामा हमारी शरीर छोड़ा, आप सोचिए उस समय यज्ञ की सारी संभाल करने वाली यज्ञ माता चली जाए, इतने वत्स बैठे हैं और यज्ञ मां बीच में से चली जाए, बहुत बड़ी घटना है, छोटी घटना नहीं थी। मामा ने कैसे संभाला हुआ था। उस समय कोई कम बच्चों के टेस्ट आए होंगे। बाबा कहते हैं, दो पैसे का मटका खरीदने जाते हो, ठोक ठोक के देखते हो, उसको पूछते हम थोड़ा पानी डाल के देखे, ताकि मेरा मटका छेद वाला या क्रैक वाला नहीं होना चाहिए। अरे बच्चे, मैं तो तुम्हें नई दुनिया का प्रिंस एंड प्रिंसेस बनाने ले जा रहा हूं, सच्चों की दुनिया के देव दुनिया का मालिक बनाने ले जा रहा हूं, क्या तुम बच्चों को देखा नहीं जाएगा। बिना टेस्ट के, बिना किसी घटना के, बिना कोई सामने परीक्षा के, तुम ऐसे ही पास होकर नंबर वन नहीं ले लोगे। परिस्थितियां अनेक प्रकार की आएंगी, परीक्षाएं बहुत आएंगी। जब कोई ऐसी बात होती है जिसमें हमारा कसूर नहीं है, कसूर दूसरे का है लेकिन दोषी मुझे बनाया है, उस समय अवस्था क्या होती है। कहां गया वो निश्चय, जो गायन है निश्चिंत होगा और निश्चित है ये जो कुछ हुआ है, कहां है वो निश्चय। सेकंड सेकंड निश्चय टूटता है, निश्चय टूटने में टाइम नहीं लगता है। निश्चय टूटने का खाली ये मतलब नहीं है हमने पढ़ाई छोड़ के घर बैठ के, छोटी छोटी बातें ये भी निश्चय को तोड़ने का सवाल बन जाता है। निश्चिंत हो, बाबा कहते हैं उनके कितने व्यर्थ के चिंतन नहीं चलेंगे, ना कोई व्यर्थ के प्रश्न चलेंगे, उनके पास टाइम ही टाइम है। वो कभी ये नहीं कहेंगे टाइम नहीं है, बहुत टाइम है, क्योंकि लाइट है और जो करना है वही करते हैं, जो नहीं करना वो उनका संकल्प ही नहीं, वो नहीं आता, वो करते ही नहीं। तो आप सभी वो फाइनेंस वाले हो, आपको भी तो बचत की स्कीम देखनी है ना, कहां से बचाया जाए और कहां से अपनी अवस्था को बढ़ाया जाए। तो मैं तो कहूंगी आज कि अगर आपको अपनी अवस्था को बढ़ाना है, अच्छा करना है, तो उसमें आप अवश्य देखिए हमारे निश्चय में कभी भी अंतर नहीं आना चाहिए। निश्चय ये मतलब नहीं है हम आए वाणी सुन ली, नहीं सुन पाए तो हमने वाणी पढ़ ली, नहीं पढ़ पाए तो हमने वाणी वीडियो ऑडियो किसी द्वारा भी हमने ले ली, वो कोई नहीं है। देखिए किसके महावाक्य सुन रहे हैं। आज कई कहते हैं साकार आज नहीं है ना, वो पालना कहां से मिलेगी। मुझे ऐसा आता है आज भी जब हम वाणी पढ़ते ऐसे लगता है दाता वो प्यारा प्रभु साकार द्वारा आज भी हमारी पालना वैसे ही कर रहा है जैसे करता था। जरूरी नहीं है वो लेके मुझे गोद में बैठेगा, लेकिन मुझे वो प्यार देता है जो गोद से बढ़कर प्यार महसूस होता है। बच्चे ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है। ये करने से अवस्था बढ़ती है, ये करने से अवस्था घटती है। खाना ऐसा खाना है, ये चीजें नहीं करनी है। ये जो हमें सावधानियां और समझानियां कदम कदम की देते हैं, ये ईश्वर का प्यार नहीं तो क्या है। हर बात की सावधानी और समझ। हमारी मामा जब यज्ञ से गई, आप सोचिए उस समय का, कई बार मैं दृश्य बताती हूं, तो बाबा ने कहा था जब मामा गई और मामा को लाकर के हॉल में रखा, छोटे हिस्ट्री हॉल में पांडव भवन में, तो बाबा बैठे हैं, गुलजार दादी को साथ बिठाया है। बाबा कहते देखो बच्ची, जाके बच्चे तुम क्या समझते हो, इतना बड़ा यज्ञ और यज्ञ माता, क्या यज्ञ माता चली जाएगी? तुम समझते हो यज्ञ माता चली जाएगी? सब मुंह देख रहे हैं, गई हुई तो दिखाई दे रही, कहते चली जाएगी। बच्चे यज्ञ माता नहीं जाएगी। बाबा ने कह दिया यज्ञ माता नहीं जाएगी। टेस्ट है, पास होके दिखाना। मां ने कभी आंसू नहीं बहाए, आंसू नहीं बहाना, पास होके दिखाना, यज्ञ माता वापिस आ जाएगी। बड़ी बात है, फिर हम रोए क्यों, किसके लिए रोए? बाबा ने तो कह दिया ना यज्ञ माता तो वापिस आ जाएगी। अरे बच्चे, अर्थी से उठ के भी आ जाएगी। क्या समझते हो? बाबा कहते तो समझते हैं, हाँ ही सही। क्या समझते हो बच्चे? चिता से भी उठ के आ सकती। अच्छा, तब तक भी आंसू नहीं बहाने, ख्याल रखना। एक तरफ ये कह रहा है, दूसरी तरफ तैयारी करवा रहा है। अर्थी की भी तैयारी हो रही है, उनके कपड़ों की भी तैयारी हो रही है, उनके जरा सब तैयारियां चल रही हैं, लेकिन एक तरफ ये हो रहा है। कोई कहेगा ये बाबा ने कैसे कहा? अरे बाप, इतने बच्चे जिसके चारों तरफ बैठे रोने वाले बैठ जाएं, वो अकेला बाप क्या करेगा उस समय? एक ने आंसू नहीं बहाया, एक भी आंसू नहीं। योग लगाना, अभी देखना मामा आएगी, देखना अभी आएगी मामा। सब बैठे हैं, देख रहे हैं। संदेशी जाओ, देख कर आओ, बाबा भेज रहे हैं मामा को कि नहीं। बच्चे पावरफुल योग लगाओ, देखो गई संदेशी, ट्रांस में आती है वापस, कहती है बाबा छोटे छोटे धागे हैं मामा को खींच रहे, ऐसा लग रहा खींच रहे। उन्होंने कहा देखा बच्चे, तुम्हारी याद के धागे मामा को खींच रहे हैं, मामा वापिस आ जाएगी। सब और पावरफुल योग लगाओ ऐसे। सब रात को, रात किसको कहते हैं, इस कदर बैठे हैं, सारे बाबा की याद में बैठे हैं, बस हमारी मामा वापिस आ जाएगी। और बाबा संदेश ने बताया कि मामा बीच में आई, लेकिन फिर मामा चली गई। बाबा ने कहा नहीं बच्चे आ जाएगी, तुम योग लगाओ, एक भी आंसू बहाएगा मामा नहीं आएगी, ख्याल रखना। बड़े बड़े आए, कोई नहीं। और जब मामा चली गई तो बाबा ने कहा मामा जाए तो हलवा खाओ, बाबा जाए तो हलवा खाओ, खत्म हो गया काम। अब दो तीन दिन हो चुके थे, आंसू तो सूख चुके थे, अब तो हलवा खाने का टाइम आ गया। बाबा ने कहा जल्दी हलवा बनाओ, मेरे बच्चे आ गए शमशान से, सबको हलवा खिलाना है, भोग लगा के हलवा खिला। अब बाबा की युक्ति है और सत्य है, बाबा ने कहा यज्ञ माता है। और बाबा ने क्या किया, तीन गद्दियां होती थी, एक मम्मा की, एक बाबा की, बीच में बच्चों की जो अपने एक्सपीरियंसेस सुनाते थे। बाबा ने मन्ना मामा की गद्दी पर मामा का चित्र, बड़ा सुंदर चित्र, बहुत फर्स्ट क्लास, बड़ी प्लेट थी, उस प्लेट में चीनी की प्लेट में, चाइनीज प्लेट होती है, बड़ी पतली पतली चीनी होती है, मामा के सुंदर चित्र रख दिया गद्दी। दो तीन दिन चित्र में समझती रहा, चौथे दिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम ये बताओ तुम्हारी माँ है कौन? ये ब्रह्मा जिसके मुखारविंद से ब्राह्मणों का जन्म हुआ, ब्रह्मा तुम्हारी माँ है, शिव तुम्हारा पिता है, लेकिन ब्रह्मा पुरुष तन होने के कारण माँ स्त्री चोले में निमित्त बनाई गई, वो निमित्त माँ थी। तुम जो कहते हो हमारी मामा चली गई, तुम्हारी चली गई माँ, होते हुए माँ को कहो माँ चली गई, ये अच्छा है शब्द। माँ गई? नहीं गई। नहीं गई, बोलो गई माँ? नहीं गई। माँ तो है बैठी, तो ये चित्र उठा दो बच्चे, ये किस लिए रखा है? तीन दिन के बाद चित्र उठा दिया, हो गया पूरा। बस इतना बाबा बच्चों को किस कदर मजबूत करता था। बाबा कहता था निश्चय क्या चीज होती है, बाबा जानता था यज्ञ का कहानी क्या है, ये ऑलमाइटी जानता है सब कुछ। एक बार ब्रह्मा बाबा ने कहा था जब शुरुआत में कि बाबा मुझे ही नहीं पता चल रहा ये सब होगा क्या, ये सब आ रहे हैं घर से, ये सब क्या होगा है क्या, तो संदेशी द्वारा संदेश दिया बाबा को, मुझे नहीं कुछ मालूम पड़ता। तो ऑलमाइटी ने ब्रह्मा बाबा को सब बताने के लिए एक मास तक एक बहन के तन में प्रवेश होकर के ऑलमाइटी ने ब्रह्मा बाबा को सारी राम कहानी सारे यज्ञ की गाथा सुनाई। छोटी कन्या थी जिसमें उस समय गायन था पिया और पियू, पियू कहते थे शिव बाबा को, पिया कहते थे ब्रह्मा बाबा। बहुत सुंदर संवाद, अभी मैं इसलिए ये चर्चा की क्योंकि अभी बीच में एक मुरली आई है पिया पियू की। अब कईयों को नहीं पता पिया पियू कौन क्या कहानी, लंबी गाथा है वो तो। बाकी मैं इतने कहूंगी क्योंकि टाइम तो आपका हो रहा है, मेरा तो यही कहा 11:30 तक करानी है, तो मेरी इस बात को जरूर ख्याल रखना। सभी निश्चय पत्र, अभी आपने कुछ पूछना हो तो पूछो, ऐसा नहीं मेरी कोई बात सुनाने पर आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा है और वो प्रश्न लेकर चलो, बाबा कहते प्रसन्न नहीं रहोगे, फिर प्रश्न नहीं लेके जाना। अगर कोई आपको प्रश्न मन में आया जो मैं सुनाया उस संदर्भ में, तो मेरे से पूछिए। कोई है प्रश्न? नहीं, वो कहानी नहीं सुनाऊंगी अभी, वो कहानी लंबी गाता है, वो तो बाबा के समय प्रति समय वाणियां आती हैं। बस खाली मैंने इतना हिंट जरूर दिया कि पिया ब्रह्मा बाबा, पियो शिव बाबा। इस प्रकार बाबा ने कहा पिया से मिलने पियो आया है। 12 साल की कन्या थी जिसमें ऑलमाइटी ने प्रवेश किया था और प्रवेश होकर के ब्रह्मा बाबा को सारी गाथा बताई, तू कौन है, मैं कौन, और किस प्रकार ये यज्ञ सारा कैसे चलेगा, क्या क्या होगा, सब कुछ गाथा बाबा ने बताई थी। वो कन्या अभी नहीं, उस कन्या को क्या हुआ कि हमको तो बाबा ने उस कन्या को भी मिलने के लिए भेजा था। हम जब बॉम्बे में गए तो हम 3 कन्याएं गई थी, तो बाबा ने कहा जाओ बच्चे उस मेरी बच्ची से मिल के आओ। तो हम लोग मिलने गए थे, क्या कि उसको जब ऑलमाइटी आया तो ब्रह्मा बाबा को भी सब काम सब बातें वही कहती थी, आपको आज इतने घंटे योग लगाना है, आपको इतने घंटे ये करना है, आज यज्ञ ऐसे चलेगा, सब कुछ उसकी हैंडिंग में चलता था। तो उसको थोड़ा सा ये आ गया, मैं तो ब्रह्मा बाबा से बड़ी हो गई, छोटी थी ना, अब तो ब्रह्मा बाबा को मामा को मैं ऑर्डर देती हूँ, तब वो मेरे अनुसार ही तो करते हैं सब कुछ। सबसे बड़ा अहंकार है जो मनुष्य को खा जाए, कितना ऊंचा स्टेटस हो सकता, कितनी महान वो आत्मा बन सकती थी, लेकिन समा नहीं सकी। इसलिए बाबा कहते हैं दिव्य दृष्टि का वरदान बाबा ने इस समय बच्चों का स्टॉप कर दिया, क्योंकि अभी आत्माएं थोड़ी कमजोर है, उसको समा नहीं सकेंगे। इतने उच्च ज्ञान को समा लेना, स्वरूप में लाना, इसमें थोड़ी मेहनत की बात। ओम शांति, ओम शांति। कुछ भी पूछना ना, बस हो गई बात। अच्छा हाँ, फिर तो फिर उसके बाद दोबारा लिखवाया नहीं गया, बाकी हमने जरूर लिखा था, अवश्य लिखा, और फिर भी मैं लिखती रही, नहीं भी कहा दादियों ने और तब भी लिखती रही। अभी भी मुझे आ रहा था, बहुत समय हो गया, जिस क्लास की मैं निमित्त बनी मैंने उस क्लास वालों को अभी तक नहीं कहा लिखो, मुझे जरूर कहना चाहिए। आपको सुनाते सुनाते मेरे मन में चल रहा था कि लिखवाना जरूर चाहिए। ये समय प्रति समय सूक्ष्म में मन में मान अपमान, तेरा मेरा, ऊंचा नीचा, अमीर गरीब, कई भावनाएं हमारी आपस में मित्र भाव से, क्लास के विद्यार्थी भाव से, दुनियावी जीवन में कुछ ना कुछ चलता है और वो हमारे निश्चय के अंदर विघ्न डालता है, जिससे हम ना तो निश्चिंत रह पाते हैं मैं निश्चित है ये जो कुछ हो रहा है ये सब ठीक है, मुझे क्या करना है वो आज्ञा जो बाबा की है वो उसकी आज्ञा के अनुकूल मैं चलती चली रहूं। महावाक्य उसकी आज्ञा है जो रोज सुनते हैं, उसमें मेरी बुद्धि नहीं चली। जो करना है श्रेष्ठ मुझे करना है, जो हो रहा है साक्षी बनकर देखना, स्थिति मेरी ढुलाई मानना हो जाए। छोटी छोटी बातों में हिल जाती। अभी आपको एक को पकड़ा कहा आ जाइए आप आगे सोफे पर बैठ जाइए, दूसरे को कहते आप थोड़ा पीछे हो जाओ, घूर के देखता ये है कौन।